टेररिस्ट लोग, टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, आतंकवादी लोग अल्लाह का नाम लेकर जिहाद करते हैं, है ना, वो सुसाइड बॉम्बर जो होते हैं अपने पूरे बॉडी पर बम बांध देते हैं, बम बांध देते हैं, फिर अल्लाह का नाम कुछ उसमें से कुछ पढ़ते हैं, बंदगी करते हैं, फिर अल्लाह की फिर सबको मार देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मुमला की पार्वती पति का ध्यान करके उसको विष दे देना। अभी एक चीज ध्यान रखना, दुष्ट बुद्धि की बेटी का नाम क्या है, विषया, याद रखना। और ये क्या देने के लिए बोल रहा है, विष देने के लिए बोल रहा है। यहां स्टोरी में बहुत बड़ा चार्ज आने वाला है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, देखना अभी। उसके बाद दुष्ट बुद्धि ने विशाल नेत्रों वाले सुंदर चंद्रहास से कहा कि चंद्रहास तुम मेरी बात सुनो। उसने सील कर दिया ये लेटर लिखकर, उसको मुद्रा लगा दी उसके ऊपर, सील कर दिया कि कुंतलपुर में जाकर मेरे बेटे मदन को ये पत्र दे देना। और ये पत्र देना बहुत आवश्यक है, बहुत बड़ा काम है। और मेरे द्वारा मुद्रित इस पत्र को तुम खोलकर देखना मत। यदि खोलकर देखोगे तो तुम्हें दो शिव मूर्ति तोड़ने का पाठक लगेगा। शिव मूर्ति तोड़ने का जितना भी पाप होता है उतना पाप तुम्हें लगेगा यदि तुम्हें मुद्रा तोड़ दी तो। ऐसे ही उसको धमकाने के लिए, थोड़ा डराने के लिए। अफकोर्स चंद्रहास कोई डरता नहीं, वो सरल सरल मन वाला व्यक्ति है, वैष्णव है। और यदि तुमने मुद्रा खोले बिना खोले मेरे पुत्र को दे दिया तो तुम्हारा गुप्त रूप से परम हित होने वाला है। इतना झूठ बोलता है देखो ये। तो चंद्रहास ने बोला ठीक है, तो अपने चार सेवकों को लेकर वहां से सुंदरपुर की यात्रा प्रारंभ की चंद्रहास ने मदन को मिलने के लिए। तो नारद जी कहते हैं अर्जुन को कि चंद्रहास शीघ्रता पूर्वक वो मंत्र लेकर कुंतलपुर गया और कुंतलपुर जाने के लिए निकला। उसने दुष्ट बुद्धि अपने अपने पिता कुलिंद को प्रणाम किया, मेधावती की आज्ञा। मेधावती कौन है, चंद्रहास की मां, कुलिंद की पत्नी जिन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया। तो तीनों की आज्ञा लेकर वो मेधावती की आज्ञा लेने के लिए उसके भवन में भी गया। मेधावती ने उसकी आरती उतारी। यहां कुछ लोग दिए हैं तो किस प्रकार से हमारे शरीर के अलग अलग भागों की रक्षा करने के लिए विष्णु के अलग अलग रूपों का हमें आवाहन करना चाहिए, वही कयामरण किया। तो माता ने दधी दुर्वा और अक्षतों के द्वारा पुत्र के ललाट में तिलक लगाया। दधी माने दही, दुर्वा घास होता है एक प्रकार का, अक्षत माने चावल। तो उसके द्वारा पुत्र के ललाट में तिलक लगाया और फिर कहने लगी बेटा तुम्हारे मार्ग सदा मंगलमय हो। मां जो होती है अपने बेटे को आशीर्वाद ही देती है हमेशा। वो कह रहे थी अभी बहुत सुनिए कि नारायण तुम्हारे मुख की, जनार्दन दोनों भुजाओं की, ऋषिकेश वक्त स्थल की और माधव उदर की रक्षा करें, पद्मनाभ नाभि को, नृसिंह कुक्षी को, कुक्षी यू नो कुक्षी, दिस इज कुक्षी, दिस पार्ट इज कॉल्ड कुक्षी। इसलिए कहते हैं ना भोजन करने के बाद वाम कुक्षी करना चाहिए, बाई ओर होना चाहिए, दिस इज वाम कुक्षी, इसलिए इसको ये कुक्षी है। नृसिंह कुक्षी को, भगवान कमल पत्राक्ष कटी को, कमर को, मधुसूदन दोनों जंगाओं को तो सुरक्षित रखें, तुम्हारे दोनों जानवरों की यज्ञ भोक्ता गुल्कों की दामोदर, गुल्क माने ये काव्य जिसको होते हैं इंग्लिश में, दोनों चरणों की सहस्त्रपाद और दोनों नेत्रों की सहस्त्राक्ष रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान त्रिविक्रम तुम्हारे शरीर सारे शरीर को संकट से बचावे। बेटा जाओ और जैसे तुम अपनी सहज कांति से संपन्न हो राजा की गोद में प्राप्त हुए थे, आशीर्वाद दे रही मां कि तुम बिना किसी इंजरी के वापस लौट करा देना। वो कैसे बोल रही है कि जैसे तुम राजा को राजा की गोद में प्राप्त हुए थे जब वो छोटे थे 3 साल के, जब वन में प्राप्त हुए 5 साल के, उस समय तुम अपने अनुरूप पत्नी के साथ पुनः शीघ्र ही लौट आना। वो क्या बोल रही है वो, उसी तरह तुम अपने अनुरूप पत्नी के साथ पुनः शीघ्र लौट आना, मतलब पत्नी लेकर आना, अभी शादी करके आना, और इसका आशीर्वाद सच्चा हो जाता है। विश विषय याद रखना, धर्मेंद्र चल रहा उसने अपनी माता की परिक्रमा की और अपना प्रिय और हितकर करने वाले जो सेवक विचार के वक्त उनके साथ कुंतलपुर की यात्रा आरंभ की। तो मार्ग में जाते समय उसने अच्छे शकुन देखे, देखिए ये तो बड़ा खतरा लेकर जा रहा था ना, अपनी ही मौत को लेकर जा रहा था। पत्र में उसी के मौत के बारे में लिखा था, चंद्रहास की मौत के बारे में, लेकिन मार्ग में उसे दूसरे गांव से नव विवाहिता बधु के साथ एक दूल्हा दिखा, ये सब अच्छे शकुन है, और वो हल्दी और कुमकुम के रंग से गाढ़ा रंगा हुआ था जिससे बड़ा मनोहर लग रहा था। फिर आगे बढ़ने पर पहले पहले ब्याई हुई गाय देखी उसने, जैसे पहले पहले बछड़े को जन्म दिया, ऐसी गाय अपने बछड़े के साथ आ गई थी। मार्ग में वनाध्यक्ष ने उसको अनार का फल दिया खाने के लिए, ये सब अच्छे शकों में अनार का फल खाके यात्रा करना। और चलते चलते कुछ लोगों ने चंपा के पुष्पों से गुथी हुई मालाओं द्वारा उसका स्वागत किया, उसको जैसे दूल्हा जैसे बना रहे हैं, उसको माला पहना रही। कुछ लोगों ने आनंद मग्न होकर उसके मस्तक पर नाना प्रकार के पुष्पों के द्वारा बनाया गया मुकुट पहना दिया। तो नारद मुनि कह रहे कि ये सब पहनने के बाद चंद्रहास जैसे नए दूल्हे की तरह दिखने लगा। इस प्रकार चंद्रहास कुंतलपुर के समीप पहुंच गया और वहां नगर के बाहर एक क्रीड़ा उपवन था। नगर के बाहर, कुंतलपुर के अंदर अभी प्रवेश नहीं किया, नगर के बाहर एक क्रीड़ा उपवन था। उसमें उस उपवन के अंदर एक रमणीय सरोवर था। चंद्रहास उसी सरोवर के तट पर ठहर गया। उसने देखा कि उस सरोवर में हंस हंसिनियों के साथ गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है पता नहीं, क्योंकि गृहस्थ धर्म हो के तो शायद उनका फैमिली रहा होगा अच्छा खासा हंस और हंसिनी, और बहुत से कमलों के खिले हुए होने के कारण वो जो हंस थे और भी उज्जवल दिख रहे थे। हंस को बहुत अच्छा पक्षी माना जाता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू क्रो, कौवे जो होते हैं, इसलिए बोलते ना कौवा चला हंस की चाल, दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। कौवा कहां बैठता है, जहां पूरे शहर की गंदगी इकट्ठा होती है वहां कौवा जाकर बैठता है, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले लोग, जैसे ऐसे लोग दुष्ट बुद्धि वाले लोग उसी जगह बैठते हैं जहां दुनिया भर का कचरा एकत्रित होता है, जैसे हमारे यहां चंदन सिनेमा, कौन से मल्टीप्लेक्स है दूसरे दूसरे, फिर मैकडॉनल्ड, फिर सबवे, फास्ट फूड जनता है, ये सब कैसी जगह है जहां पूरे विद्यानगर का कचरा एकत्रित होता है और विद्यानगर के सब दो पैर वाले कौवे वहां जाकर एकत्रित होते हैं और वहां काव काव करते हैं, समझ रहे मेरी बात को आप। तो ये कौवे लोग हैं, ये कहते हैं जिनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है और मनुष्य जीवन का मतलब नहीं जानते हैं, इसलिए गंदी चीजें खाते हैं, गंदी चीजें सुनते हैं, गंदी चीजें देखते हैं और गंदी चीजें बोलते हैं। उसके अतिरिक्त होते हैं हंस। हंस कैसा होता है, जहां बहुत शुद्ध और निर्मल जल बहता हो वहां जाकर वो रमण करता, अर्थात जहां श्री हरि की कथा सुनाई दे रही हो, लोग श्री हरि के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण कीर्तन करते हो, वहां हंस की प्रकृति वाले लोग वहां जाकर उनका संग करते हैं साधु। यह हंस के जैसे स्वभाव वाले लोगों का लक्षण है, तो दोनों अलग है, दोनों संग कर रहे हैं, कौवा भी संग कर रहा है दूसरे कौओं का, हंस आकर दूसरे हंसों का संग कर रहा है। तो ये जो हंस थे वो और भी उज्जवल दिख रहे थे क्योंकि वहां कमल के खिले हुए फूल थे, उनके उसी में उनको आनंद आ रहा। तो इस स्वच्छ जल से भरे उस सरोवर के निकट चंद्रहास ने एक वन भी देखा जो आम और तमाल के वृक्षों के कारण नीले रंग का दिख रहा था। ये बड़ा अनुपम वन था, इसका सौंदर्य ऐसा यहां भी बहुत फिगरेटिव लैंग्वेज में बताया है, फिगरेटिव नहीं पोएटिक लैंग्वेज। उस वन को अद्भुत माना, उसने यही समझा कि जैसे साक्षात वसंत ऋतु ही यहां निवास करता हो, अलग अलग प्रकार की जो ऋतुएं होती हैं उसके भी देवता होते हैं, अधिष्ठाता होते हैं, अधिष्ठाता होते हैं, देवता होते हैं, पर्सनिफाइड वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उनके भी देवता होते हैं। तो इस वन का अनुपम सौंदर्य का ये यहां उसको निहार उसको देख रहा है। तो आज की कथा यहां समाप्त करते हैं। तो चंद्रहास का यहां मिलन होगा विषया के साथ, तो कुछ रोमांटिक सीन यहां हम वर्णन करेंगे अगले अगले रविवार को। बहुत ही आने वाले जो श्लोक हैं उसमें इतना इतना पोएट्री है, ये पोएट्री में आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन डेफिनेटली वो जो वन जो देख रहा था चंद्रहास वो इतना मनोहर था कि पूरी तरह से उस वन की सुंदरता को देखकर वो आकर्षित हो गया, जैसे वहीं बैठा है वहां से उसको हिलने का मन नहीं होता, इतना सुंदर वन था वो। तो आगे की कथा का वर्णन हम अगले रविवार को करेंगे। हरे कृष्ण।